इंसान की फितरत बड़ी अजीब होती है ना। मतलब सुरक्षा और शांति पाने की चाहत में हम अक्सर ऐसी ऊंची दीवारें खड़ी कर लेते हैं या ऐसी जटिल व्यवस्थाएं बना लेते हैं
जो आखिर में हमारे ही ऊपर ढह जाती हैं।
हाँ बिल्कुल, हम सोचते हैं कि हमारा पैसा या हमारी ताकत हमें बचा लेगी, लेकिन असल में हम अक्सर गलत चीजों पर अपना दाव लगा रहे होते हैं।
एकदम सही कह रहे हैं आप, और यही बात हजारों साल पहले यशाया के प्राचीन ग्रंथों में भी बताई गई है।
जी, और आज की इस गहरी चर्चा में हम यशाया के अध्याय 34 और 35 के पन्नों की गहराइयों में उतरने वाले हैं, ताकि मतलब भरोसे के असल मायने समझे जा सकें।
बिल्कुल, और इन स्रोतों का मुख्य विषय यही है कि जब इंसान ईश्वर के बजाय खुद पर या अपनी बनाई व्यवस्थाओं पर भरोसा करता है तो उसके क्या परिणाम होते हैं।
हाँ, और इसके विपरीत अगर वही भरोसा सही जगह रखा जाए तो कैसे एक खौफनाक विनाश भी एक खूबसूरत बगीचे में बदल सकता है।
देखिए, ये जो विनाश और छुटकारे का विरोधाभास है ना, ये कोई पुरानी कहानी नहीं है। ये असल में हमारे रोजमर्रा के निर्णयों का एक बहुत स्पष्ट आईना है।
मतलब ये सीधे तौर पर हमारे आज के जीवन से जुड़ा है।
हाँ, यशाया के इन दो अध्यायों में हम एक बहुत ही बुनियादी सवाल से टकराते हैं। जब कोई बड़ा संकट आता है तो इंसान का पहला झुकाव क्या होता है?
क्या वो खुद की बनाई हुई व्यवस्थाओं की ओर भागता है या फिर
प्रतीक्षा करता है? अध्याय 34 हमें वो खौफनाक मंजर दिखाता है जब मानवता पूरी तरह से अपनी ताकतों पर निर्भर होने का फैसला करती है।
तो चलिए इसी खौफनाक मंजर से बात शुरू करते हैं, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है कि ये पतन मतलब शुरू कहां से होता है।
बिल्कुल, अध्याय 34 के शुरुआती श्लोकों में एक तरह के सार्वभौमिक पतन की बात की गई है।
जी, वहां स्पष्ट रूप से लिखा है कि पूरी दुनिया और स्वर्ग की सेना पर न्याय होगा। अब एक मिनट रुकिए।
हाँ बताइए।
जब कोई स्वर्ग की सेना सुनता है तो दिमाग में तुरंत भौतिक तारों, आसमान के ग्रहों या शायद पंखों वाले स्वर्गदूतों की तस्वीर बनती है।
स्वाभाविक है,
लेकिन मुझे लगता है कि प्राचीन काल के संदर्भ में इसका मतलब सिर्फ आसमान में चमकने वाले तारों से कहीं ज्यादा था। क्या ऐसा नहीं है कि हम यहाँ उन झूठे देवताओं या व्यवस्थाओं के पतन की बात कर रहे हैं जिन्हें इंसान ने खुद गढ़ा है?
हाँ, आपने बहुत सही पॉइंट पकड़ा है। प्राचीन मध्य पूर्वी समाजों में आसमान के तारे केवल गैस और आग के पिंड नहीं माने जाते थे।
अच्छा
जी, वे देवताओं और उन व्यवस्थाओं का प्रतिनिधित्व करते थे जो दुनिया को चलाती हैं। इसलिए जब यशाया कहते हैं कि स्वर्ग की सेना नष्ट हो जाएगी,
तो वह दरअसल ये कह रहे हैं कि इंसान ने अपने लिए जो भी झूठे देवता गढ़े हैं वे सब एक दिन ढह जाएंगे।
बिल्कुल, इंसान की हमेशा से ये आदत रही है कि वो अपनी ही छवि में, अपने ही विचारों के अनुसार देवताओं का निर्माण करता है।
ये जो अपनी छवि में देवता गढ़ने वाली बात है ना, ये मुझे एक विश्लेषणात्मक उपमा की याद दिलाती है।
कैसी उपमा?
मतलब अपने ही स्वरूप में देवताओं को गढ़ना एक ऐसे दर्पण को बनाने जैसा है जो केवल हमारी कमियों को ही बड़ा करके दिखाता है।
अरे वाह, ये बहुत सटीक उदाहरण है।
है ना, क्योंकि हम इंसान खुद इतने अस्थिर और असुरक्षित हैं तो हमारे बनाए देवता कैसे भरोसेमंद हो सकते हैं।
यही तो सबसे बड़ी विडंबना है। जब समाज अपने देवताओं को अपने जैसा बनाता है तो वे देवता बिल्कुल इंसानों की तरह ही मनमौजी और गलतियों से भरे होते हैं।
हाँ, प्राचीन काल के देवताओं की कहानियों में तो वो आपस में लड़ते झगड़ते ही रहते थे।
बिल्कुल, और ऐसे देवताओं पर भरोसा करने का मतलब है एक ऐसी व्यवस्था पर भरोसा करना जो भीतर से पूरी तरह सड़ी हुई है। इसी सड़ांत को समझाने के लिए श्रोत में एक बहुत ही गंभीर शब्द इस्तेमाल हुआ है, हरम।
हरम, जहाँ तक मुझे याद है इस शब्द का इस्तेमाल प्राचीन यरीहो शहर के विनाश की कहानी में भी हुआ था।
एकदम सही याद है आपको।
लेकिन इसका असल में मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ विनाश का एक और शब्द है?
नहीं, ये केवल साधारण विनाश की बात नहीं है। हरम का अर्थ है किसी ऐसी चीज को पूरी तरह से ईश्वर को सौंप देना जो इस हद तक भ्रष्ट हो चुकी है कि उसका कोई सुधार संभव ही नहीं है।
अच्छा, मतलब इतनी भ्रष्ट कि बस उसे खत्म ही करना पड़ेगा।
हाँ, जैसे मान लीजिए किसी इमारत की नींव में इस कदर दीमक लग चुकी है कि उसे मरम्मत करके बचाया नहीं जा सकता, उसे जमीन दोज करना ही पड़ता है।
बाप रे, लेकिन एक बात सोचिए।
जी,
जब हम पूरी दुनिया के विनाश की बात सुनते हैं तो ये विचार बहुत ही अमूर्त सा लगता है। मतलब एक आम इंसान इससे सीधा जुड़ाव महसूस नहीं कर पाता।
हाँ, ये बहुत बड़े स्तर की बात हो जाती है।
शायद इसीलिए यशाया अध्याय 34 में अचानक पूरी दुनिया से ध्यान हटाकर एक विशिष्ट राष्ट्र एदुम पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं।
बिल्कुल, ये सामान्य से विशिष्ट की ओर जाने का एक तरीका है।
ये तो वैसा ही है ना जैसा हमने अध्याय 13 में बेबीलोन के मामले में देखा था, लेकिन मेरा सवाल ये है कि एदोम ही क्यों?
ये बहुत दिलचस्प है। एदोम को समझना इस पूरी कहानी की धुरी है। एदोम कोई विशाल साम्राज्य नहीं था, वे मृत सागर के दक्षिण में रहने वाले लोग थी और सबसे बड़ी बात वे एसाफ के वंशज थे।
एसाफ के वंशज मतलब वे इसराइलियों के सगे रिश्तेदार थे।
बिल्कुल, लेकिन उनका इतिहास धोखे से भरा था। जब इजरायली मिस्र से निकल रहे थे तो एदोम ने उन्हें रास्ता देने से साफ इनकार कर दिया था।
सगे रिश्तेदार होकर भी रास्ता नहीं दिया, और जहां तक मैंने स्रोतों में पढ़ा है कहानी यही खत्म नहीं होती।
हाँ, आगे और भी भयानक हो जाती है।
जब यरूशलेम पर बेबीलोन ने हमला किया तब एदोम ने जो किया, मतलब वो तो बहुत बड़ा विश्वासघात था। उन्होंने बंदियों को वापस दुश्मनों को सौंप दिया।
जी, और उनकी बर्बादी पर जश्न भी मनाया। इसी क्रूरता की वजह से एदोम महज एक जगह नहीं बल्कि उस हर चीज का प्रतीक बन जाता है जो ईश्वर की योजना का विरोध करती है।
यहाँ मैं इस विचार को थोड़ा चुनौती देना चाहूंगा।
हाँ बताइए।
देखिए, अगर किसी ने किसी के अपनों को मरवाया हो तो न्याय का तकाजा तो यही कहता है कि बदला लिया जाए। मध्य पूर्व का वो पुराना बदले का चक्र तो हम जानती हैं।
उंगली तोड़ने के बदले उंगली तोड़ना।
बिल्कुल, किसी ने उंगली तोड़ी तो सामने वाला कलाई तोड़ता है, फिर बात पूरे राष्ट्र को मिटाने तक पहुंच जाती है। ऐसे में ये कहना कि न्याय ईश्वर पर छोड़ दो, क्या ये हमें बेबस नहीं बनाता?
ये एक बहुत ही स्वाभाविक मानवीय प्रतिक्रिया है, लेकिन बदला लेना और न्याय करना, इन दोनों के बीच एक बहुत गहरी खाई है।
वो कैसे?
बदला लेना अपनी चोट की आग में खुद को भी जलाना है। यशाया जब कहते हैं कि न्याय ईश्वर पर छोड़ दो, तो वो असल में हमें उस अंतहीन नफरत के चक्र से हमेशा के लिए आजाद होने का रास्ता दिखा रहे हैं।
अच्छा, मतलब वो नफरत के जहर से बचने की बात है। ये बात मुझे दाऊद की कहानी की याद दिलाती है।
गुफा वाली कहानी?
हाँ, जब राजा शाऊल दाऊद को मारने के लिए ढूंढ रहा था और वो उसी गुफा में निहत्था आ गया जहां दाऊद छिपा था। दाऊद के लिए वो बदला लेने का सबसे सही खुला दरवाजा था।
बिल्कुल, उसके साथियों ने भी तो कहा था कि यही मौका है।
हाँ, लेकिन दाऊद ने उस अवसर का फायदा उठाने से इनकार कर दिया। उसने न्याय पूरी तरह से ईश्वर के हाथों में छोड़ दिया।
और यही एदोम और दाऊद के रवैये को अलग करता है। एदोम ने अहंकार में नियंत्रण अपने हाथ में लिया, लेकिन दाऊद ने नियंत्रण छोड़ दिया।
और एदोम के इस अहंकार का परिणाम बहुत भयानक हुआ। अध्याय 34 का अंत एदोम के विनाश की एक खौफनाक तस्वीर से होता है,
जहाँ सब कुछ एक बंजर जंगल बन जाता है।
हाँ, मतलब वहाँ कोई उपयोगी जानवर जैसे गाय या घोड़े नहीं बचते, बल्कि वो जगह सियारों और मुर्दाखोर जानवरों का अड्डा बन जाती है।
ये प्रकृति का अपने सबसे बुरे रूप में होना है। जब इंसान ईश्वर की अवहेलना करता है तो पूरी सृष्टि अस्त व्यस्त हो जाती है।
ये जो सृष्टि के अस्त व्यस्त होने की बात है, यहाँ स्रोत में एक बहुत ही अहम बिंदु उठाया गया है।
कौन सा बिंदु?
आजकल बहुत से पर्यावरणविद ये तर्क देते हैं कि ईसाइयत या प्राचीन परंपराएं ही पर्यावरण के विनाश का कारण है।
हाँ, अक्सर ऐसा कहा जाता है।
उनका कहना है कि बाइबल इंसान को पृथ्वी पर मनमानी करने को कहती है, लेकिन इसका कड़ा प्रतिकार करना जरूरी है।
बिल्कुल,
बाइबल का आदेश पृथ्वी की देखभाल करने का है, उसे संवारने का है। ये ऐसा है कि आपको रहने के लिए एक सुंदर घर दिया गया हो और आप वहाँ जाकर फर्नीचर पर अपने नाम के अक्षर उकेरने लगे।
हाँ, ये तो बर्बादी है।
प्रकृति का यह विनाश जो यशाया में दिखता है, वो आज्ञा मानने का नहीं बल्कि इंसान के ईश्वर से दूर जाने का परिणाम है।
एकदम सही, लेकिन अच्छी बात यह है कि यशाया हमें इस डरावने जंगल में नहीं छोड़ देते। यहीं से अध्याय 35 की शुरुआत एक अद्भुत विषमता के साथ होती है।
हाँ, वो अंधकार से प्रकाश की ओर जाने वाला बदलाव।
जी,
जो बंजर भूमि अभी मुर्दाखोरों का अड्डा थी, वो अब खुश होगी और केसर के फूल की तरह खिल उठेगी।
केसर के फूल की तरह,
ये विरोधाभास बहुत खूबसूरत है।
और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये केवल किसी बाहरी रेगिस्तान की बात नहीं है, ये हमारे व्यक्तिगत रेगिस्तान की बात है।
मतलब हमारी कमियां और हमारे पाप।
बिल्कुल, जहां कभी सियार लेटते थे, ईश्वर उन स्थानों को नरकट और सरकंडों के हरे भरे स्थान में बदल देता है।
वाह, एक निजी रेगिस्तान का बगीचे में बदलना। अध्याय 35 में लेबनान, कर्मेल और सेरोन का उपयोग उर्वरता और हरियाली के प्रतीकों के रूप में किया गया है ना?
हाँ, ये उस समय के सबसे सुंदर स्थान माने जाते थे, लेकिन जब हमारा रेगिस्तान बगीचे में बदल जाता है, तो असल में हमें नई आंखें मिलती हैं।
नई आंखें मतलब देखने का नजरिया बदल जाता है।
जी, मुक्ति का अर्थ केवल फलदायी होना नहीं है, बल्कि उस महिमा को देखने की क्षमता पाना है जो पहले से ही वहाँ मौजूद है।
नजरिए की ताकत पर स्रोत में एक बहुत ही दिलचस्प कहानी का जिक्र है, वो आशावादी और निराशावादी जुड़वा बच्चों वाली कहानी।
अरे हाँ, वो कहानी बहुत ही सटीक बैठती है यहाँ।
मैं साझा करता हूँ। तो परीक्षण के लिए निराशावादी बच्चे को दुनिया के सबसे शानदार खिलौनों से भरे कमरे में छोड़ दिया गया।
और वो क्या कर रहा था?
वो जमीन पर बैठकर जोर जोर से रो रहा था। उसने कहा कि वो इसलिए रो रहा है क्योंकि कोई ना कोई आकर उससे ये सारे खिलौने छीन लेगा।
और उस दूसरे बच्चे का क्या हुआ?
जो आशावादी था, उसे उन्होंने एक ऐसे कमरे में छोड़ दिया जो घोड़े की खाद से भरा था।
वापरे।
लेकिन वो बच्चा खुशी से सीटी बजा रहा था। जब उससे पूछा गया तो उसने कहा, जहाँ इतनी सारी खाद है वहाँ कहीं ना कहीं एक टट्टू मतलब एक छोटा घोड़ा जरूर छिपा होगा।
ये कहानी नजरिए के महत्व को बहुत खूबसूरती से दर्शाती है।
हाँ, मतलब नई आंखें पाने का यही अर्थ है कि हम मुश्किल परिस्थितियों में भी उम्मीद देख सकें।
बिल्कुल। और जब ये नई दृष्टि मिल जाती है तो हमारे चलने का रास्ता भी बदल जाता है। इसी को अध्याय 35 में पवित्रता का राजमार्ग कहा गया है।
इस राजमार्ग के विचार पर मुझे एक सवाल पूछना है।
हाँ, जरूर।
मुक्ति को दर्शाने के लिए एक राजमार्ग ही क्यों चुना गया, किसी सुरक्षित किले या मंजिल के रूप में क्यों नहीं?
ये बहुत अच्छा सवाल है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में?
मुझे लगता है कि लोग अक्सर मुक्ति को एक टेलीपोर्टेशन मशीन की तरह समझते हैं, मतलब एक बटन दबाया और आप सीधा अपनी अंतिम मंजिल पर पहुंच गए।
हाँ, शॉर्टकट की तरह।
लेकिन ये कोई मशीन नहीं है, बल्कि ये एक पक्की सड़क है जहाँ ईश्वर पूरी यात्रा में आपके साथ चलता है।
एकदम सही। और ये राजमार्ग इतना समतल है कि वहाँ कोई खूंखार जानवर नहीं है, यहाँ तक कि एक मूर्ख व्यक्ति भी इससे गिर नहीं सकता।
मतलब ये एक रिश्ते के बारे में, किसी मंजिल के बारे में नहीं।
जी।
तो इस राजमार्ग पर चलने का तरीका क्या है, मतलब ईश्वर पर भरोसा करने का व्यावहारिक अर्थ क्या है, विशेषकर आज के युग में जहाँ धैर्य तो है ही नहीं?
इसे समझने के लिए हमें पहले देखना होगा कि अविश्वास कैसा दिखता है। अविश्वास घमंड और अधीरता से भरा होता है।
हाँ, स्रोत में इसके लिए एक बहुत ही सटीक उपमा दी गई है, शीशे की दुकान में सांड की तरह व्यवहार करना।
बिल्कुल। इंसान सोचता है कि वो सब कुछ खुद कर सकता है और इसी जल्दबाजी में वो सब कुछ तहस नहस कर देता है।
तो फिर सच्चा भरोसा कैसा दिखता है?
सच्चा भरोसा भेद्यता में है, या स्वीकार करने में है कि हम सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकते, और सबसे बड़ी बात यह प्रभु की प्रतीक्षा करने में है।
प्रतीक्षा करना, ये शायद सबसे मुश्किल काम है। प्रेरितों के काम, मतलब एक्ट्स के अध्याय 1 और 2 का उदाहरण याद आता है मुझे।
वो 120 लोगों वाला वाक्य।
हाँ, उन 120 लोगों को दुनिया जीतने का काम सौंपा गया था, लेकिन उन्हें तुरंत काम पर लगने के बजाय क्या कहा गया? इंतजार करो।
जी, क्योंकि अक्सर हमारा जो हम कर सकते हैं वाला रवैया होता है, वो ईश्वर के काम में बाधा बन जाता है।
हम सोचते हैं कि आस्था कोई सीधा गणित है, जैसे 2 और 2 मिलकर 4 होते हैं।
लेकिन आस्था गणित नहीं है। कई बार हमें अपने जीवन काल में उत्तर नहीं मिलते। यशायाह की भविष्यवाणी को ही देख लीजिए, वो 150 साल बाद पूरी हुई थी।
150 साल?
फिर भी उन्होंने प्रतीक्षा की।
हाँ, और यही भरोसा है।
यहाँ मैं खुले दरवाजे की अवधारणा को चुनौती देना चाहूंगी।
बताइए, क्या चुनौती है?
अक्सर लोग सोचते हैं कि अरे, दरवाजा खुला है, अवसर सामने है, इसलिए मुझे तुरंत वहां जाना चाहिए। क्या सिर्फ इसलिए कि दरवाजा खुला है, हमें बिना ईश्वर की प्रतीक्षा की उसमें घुस जाना चाहिए?
ये बहुत ही गहरी बात है। हर खुला दरवाजा अवसर नहीं होता।
बिल्कुल। दाऊद के पास भी तो गुफा में खुला दरवाजा था, लेकिन उसने इंतजार किया। हम अपनी जल्दबाजी में खुद ही अपने लिए गड्ढे खोद लेते हैं। हाँ, लेकिन इन स्रोतों की सबसे सुंदर बात यह है कि जब हम सब कुछ बर्बाद कर देते हैं, तब भी ईश्वर हमें उस गड्ढे से बाहर निकालने के लिए आता है।
तो अगर हम इस पूरे गहन अध्ययन का सार निकालें, तो वो ये है कि इंसान की अपनी समझ पर निर्भरता हमेशा एक बंजर रेगिस्तान की ओर ले जाती है।
और जब हम अपनी कमियों के बावजूद ईश्वर की प्रतीक्षा करते हैं, तो वो हमारे उसी रेगिस्तान में फूल खिला देता है
और हमारे लिए एक सुरक्षित राजमार्ग तैयार करता है। इस पर बात करते हुए मेरे मन में श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार आ रहा है।
जरूर साझा करें।
देखिए, अगर सच्चा भरोसा 2 और 2 4 जैसा सीधा गणित नहीं है और इसमें बिना जवाब जाने प्रतीक्षा करना शामिल है, तो जरा आज की दुनिया के बारे में सोचिए।
हाँ, आज की तकनीक की दुनिया।
क्या आज की तकनीक और तुरंत संतुष्टि की जो आदत हमें पड़ गई है, वो हमारे दिमाग को बदल नहीं रही है।
ये सोचने वाली बात है।
श्रोताओं के लिए मेरा सवाल यह है कि इस हफ्ते जरा सोचिएगा, क्या आपकी जेब में रखा स्मार्टफोन आपको प्रतीक्षा करने से रोक रहा है? क्या ये तकनीक हमें एदम की तरह सब कुछ तुरंत अपने नियंत्रण में लेने के लिए उकसा रही है?
बहुत ही विचार उत्तेजक सवाल है। ये हमें ये सोचने पे मजबूर करता है कि हम वास्तव में किस पर भरोसा कर रहे हैं।
बिल्कुल। आज की इस चर्चा में बस इतना ही। अगली बार एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे।